दादी माँ कहा करती थी कि सर झुकता है तो सिर्फ ऊपर वाले के सामने या फिर उन जैसे बड़े बुजुर्गों के सामने। मगर दादी माँ तब मोबाइल फोन से वाकिफ नहीं थी। मगर आज के दौर में मानो सारा जमाना, चाहे वो बस हो, ट्रेन हो, ऑफिस हो या फैमिली डिनर, मोबाइल फोन के सामने ही सर झुकाए रहता है। और सर उठता भी है तो आसपास की घटनाओं का फोटो या वीडियो बनाकर उसे ब्रेकिंग न्यूज बनाने की फिराक में। ऐसे सोशल मीडिया के दौर में लाइक्स और शेयर की कीमत जान से ज्यादा हो गई है। और आप खुद से पूछिए कि अगर कभी आपके सामने ऐसी कोई घटना होती है तो क्या आप हिम्मत करते उसे रोकने की या उसके खिलाफ आवाज उठाने की, या फिर आप भी मोबाइल फोन में उसे कैद करने की फिराक में रहते। हाय, मैं हूं मलिष्का एंड वेलकम टू आज का एपिसोड ऑफ हैशटैग मैं भी, रियल स्टोरीज ऑफ रियल वुमेन। और आज का वाक्या हुआ जूही सेठ के साथ। जूही अपने नए जॉब के सिलसिले में बैंगलोर आई थी। यहाँ उसके स्कूल का दोस्त राज सिंह भी रहता था, जिसने जूही को घर ढूंढने में काफी मदद की थी।
मुझे वो किताबें उठाकर दो ना राज। थैंक यू सो मच राज।
You're welcome.
तुमने मेरी कितनी मदद की है। वो घर लेती तो कितना महंगा पड़ता।
अरे यार, क्या थैंक्स बोल रही है, तेरे स्कूल का दोस्त हूँ, इतना तो हक बनता है ना तेरा।
हाँ।
वैसे ये फ्लैट काफी अच्छा है ना।
हाँ हाँ, मुझे तो बहुत पसंद आया। कंपनी अकोमोडेशन दे रही थी, मगर मुझे ना किसी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता।
ठीक है ना यार, इतनी मोटी सैलरी कमा रही है, थोड़ा खर्च भी कर।
ऐसे मत बोल, तुझे पता नहीं है मैं बहुत खर्चा करती हूँ।
हाँ हाँ, मेरी खर्चीली दोस्त। चल ठीक है, आज की शाम तेरे को खर्चे से मैं बचाता हूँ।
अच्छा, कैसे?
डिनर मेरी तरफ से।
ओहो, क्या बात है। मैं सोच ही रही थी कि तू कब बोलेगा मुझसे ये बात।
अच्छा, कंजूस कहेगी।
हाँ वो तो मैं हूँ, लेकिन पता है किचन सेटअप करने में भी एक दो दिन लग ही जाएंगे।
इसलिए तो बोला। चल दें, मिलते हैं शाम को 8 बजे, ठीक है?
ओके, बाय।
बाय बाय।
बड़े शहर के पॉश इलाके में रहने का मजा अलग ही होता है। जूही अपने करियर को लेकर काफी फोकस थी। वो इंडिपेंडेंट थी और वो समझ रही थी कि बैंगलोर में आने के बाद उसकी लाइफ और बेहतर हो जाएगी। मगर जैसा हमें दिखता है सब कुछ वैसा नहीं होता है। और ये बात जूही की समझ में उसी रात आने वाली थी जब वो अपने दोस्त राज के साथ डिनर करके रेस्टोरेंट से निकली।
अरे यार, बस कर, कितना सौंफ खाएगी?
अरे मुझे बहुत पसंद है सौंफ।
इसका भी पैसा पे करना पड़ेगा मेरे को।
हाँ तो कर देना ना, दोस्त है ना मेरा। हाँ
वो तो हूँ। चल अब निकलते हैं, मैं तुझे घर ड्रॉप कर देता हूँ।
ओके। वैसे यार खाना कितना अच्छा था ना,
है ना? अरे ऐसे एक से एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाऊंगा तुझे, मेरा टेस्ट तो तू जानती है।
हाँ हाँ, स्कूल में तेरा मुझ पर क्रश था तो टेस्ट तो अच्छा ही होगा ना, अभी का मुझे पता
नहीं। ट्राई करने का है क्या?
ए, क्या बोल रहा तू? हाँ, एक दूं क्या खींच के?
राज राज छोड़ो ना,
छोड़ना। क्या बोल रहा तू? हाँ
इधर लड़की को आने ना।
राज चलो गाड़ी में
बैठो ना, मैं जानता हूँ इनसे कैसे निपटना है।
इन लोगों के मुंह मत लगो।
अरे नहीं, मैं बताता हूँ इन लोगों को।
अरे
ए, रुक, ए, क्या क्या है? हाँ क्या है?
डोंट रिएक्ट, चलो बैठो गाड़ी।
जानता हूँ इनसे कैसे निपटना है।
एक
काम करो, तुम अंदर जाओ, मैं भी आता हूँ।
पर राज तुम जा कहाँ रहे हो?
अरे मैं कुछ नहीं करूंगा यार, सिर्फ गाड़ी का नंबर नोट करने जा रहा हूँ। तुम बैठो।
लपड़ोगे, ले ले, मारा मारी हो रहा है। रुक रुक, इसका वीडियो बना के ना व्हाट्सएप पे डालते हैं। मैं रुक,
ए, सेल्फी वाला नहीं रे, आगे वाला कैमरा ना लाग रहे वाला।
रुक,
ये वायरल होगा,
ये वीडियो देख, धमाका मचाने वाला है
भाई। ये वायरल पक्का है ये।
हम में से कितने लोगों ने ऐसी घटनाओं के वक्त बिल्कुल ऐसा ही रिएक्ट किया होगा? क्या राज और जूही का चुपचाप वहां से निकल जाना सही होता, या फिर राज बिल्कुल सही कर रहा था? उस सड़क पर और भी कई लोग थे, फिर कोई रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा था? उनके पास वीडियो बनाने का समय था मगर मदद करने का नहीं, या फिर रास्ते पे चलते हुए मोबाइल पे व्हाट्सएप की जोक पढ़ने में ही काफी बिजी हैं ये लोग। खैर, राज ने हिम्मत की और जैसे ही राज उनके गाड़ी का नंबर नोट करने लगा तो तुरंत ही वो लोग उसके साथ मारपीट करने लगे।
रुक, तुझे बताता हूँ साले, रुक रुक। अभी तुम सब जेल में जाओगे, ओके?
क्या करेगा? क्या
क्या कर रहा है?
जूही भी इस वक्त गाड़ी से उतरी और उसने राज का साथ दिया।
राज, राज संभल के,
लड़की को हाथ में लगाना छोड़ दो उसे।
मगर उनमें से एक गुंडे ने जूही को नीचे गिरा दिया और राज बाकी तीनों से लड़ने लगा कि तभी एक गुंडे ने आयरन रॉड लेकर राज पर हमला किया। गुंडों ने गाड़ी के कांच तोड़कर भी उन पर वार करने की कोशिश की मगर जूही और राज जैसे तैसे वहां से बच निकलने में कामयाब हो गए। देखा जाए तो राज और जूही ने न केवल पहले जुर्म का सामना किया बल्कि वो अब भी वही करने जा रहे थे जो उन्हें करना चाहिए।
समझ में नहीं आता कैसा शहर ये है। अब वहाँ पर लोग खड़े हुए तमाशा देख रहे थे और कुछ तो उसका वीडियो बना रहे थे। क्या एक भी आदमी मदद के लिए सामने नहीं आया?
या, वही तो, लोगों को यही काम तो आसान लगता है। चल पहले पुलिस में एफआईआर करते हैं, ओके?
हाँ हाँ चलो चलते हैं।
जब भी ऐसी कोई घटना हो तो सरकार भी यही कहती है कि हमेशा अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में इसकी खबर दीजिए और राज और जूही वही करने जा रहे थे। उन पर जानलेवा हमला हुआ था मगर क्या वो जिस उम्मीद से पुलिस स्टेशन गए थे वो उम्मीद पूरी होगी? राज और जूही ने हिम्मत दिखाई और पुलिस स्टेशन तक पहुंच गए।
इंस्पेक्टर साहब हमें एफआईआर लिखानी है।
हाँ।
अच्छा पहले बैठ जाइए और बताइए हुआ क्या।
अब
पूरी बात सुन लेते हैं फिर चाहिए तो एफआईआर कर लेंगे।
सर हमें इतनी चोट लगी है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि कोई तो बात होगी ना।
हाँ समझ रहा हूँ पूरी बात तो बताइए आखिर हुआ क्या।
इंस्पेक्टर साहब जब हम दोनों रेस्टोरेंट से निकले तो वहाँ कुछ गुंडे आ गए और मुझे छेड़ने लगे, बहुत बदतमीजी कर रहे थे।
अच्छा।
और उन लोगों ने हम पर हमला किया, हमारी गाड़ी के साथ तोड़ फोड़ की। आप चाहें तो देख लीजिए सर।
कहाँ हुआ ये?
एसडी रोड पे हार्मनी हॉल के सामने।
कितने बजे?
यही कोई 10 बज रहे होंगे।
कैसे पता चलेगा वो लोग कौन है? और वो तो बहुत ही बिजी एरिया है, फिर 10 बजे ये सब कैसे हुआ? कुछ दूसरा लफड़ा तो नहीं है?
और क्या लफड़ा होगा सर, हम यहाँ कंप्लेन लिखवाने आए हैं और आप हम पे ही शक किए जा रहे हैं।
नहीं मैडम ऐसी बात नहीं है, मैं क्या कह रहा हूँ वहाँ पर इतने लोग मौजूद थे, किसी ने भी हेल्प नहीं किया।
आपको तो पता है ना सर आजकल लोग हेल्प करने नहीं आते, वीडियो बनाते हैं।
सर हमने उनकी गाड़ी का नंबर नोट किया है, ये वो नंबर गाड़ी का।
अरे मैडम गाड़ी का नंबर नोट करते बैठे आप, आपको वहाँ से निकल जाना चाहिए था।
क्या
ये आप कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, हम कोई क्रिमिनल है क्या जो भाग जाएंगे?
मुझे बताया आप लोगों का रिश्ता क्या?
दोस्त हैं सर हम।
दोस्त हैं?
हाँ।
तो दिन में मिलना चाहिए, आप तो खबरें पढ़ती ही रहती है, अपनी जिम्मेदारी समझिए मैडम।
क्यों रात को दोस्त के साथ डिनर पर नहीं जा सकते?
पुलिस की बातों से जाहिर हो रहा था कि वो एफआईआर नहीं लिखाना चाहते मगर जूही ने भी ठान ली थी कि उस रात एफआईआर दर्ज कराए बिना वो पुलिस स्टेशन से नहीं जाएगी।
देखिए आप एफआईआर दर्ज कीजिए, यहाँ वहाँ की बातें मत कीजिए।
हाँ ठीक है ठीक है, अभी काफी रात हो गई है। क्या? आप लोग एक काम कीजिए आप कल सुबह आ जाइए, देखते हैं।
सर हादसे का कोई टाइम नहीं होता और हम लोग कल सुबह क्यों आए? हमें रिपोर्ट अभी लिखवानी है और आपको लिखनी ही पड़ेगी।
अरे मैडम आप बेकार में चिल्ला रही हैं, मैं बोल रहा हूँ ना आप टेंशन मत लो, कल सुबह देख लेंगे जो करना है वो।
क्या बात कर रहे हैं सर,
हमें एफआईआर अभी दर्ज करनी है, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे?
फिर वही बात मैडम, आप पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, फिर क्यों इस झमेले में पड़ रही हैं? आपको पता है एफआईआर करने के बाद आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, रोज रोज आपके अच्छे के लिए बोल रहे हैं।
हाँ हाँ बहुत अच्छा देख रहे हैं सर आप, वो लोग तो खुलेआम लड़कियों को छेड़ रहे हैं, हमें उठवाने की बात कर रहे थे और आप हमें ये समझाने में लगे हैं कि दिन में निकलो, वहाँ से निकल जाओ, भाग जाओ। एक तरफ तो महिलाओं के लिए हेल्पलाइन शुरू की है और दूसरी तरफ हम यहाँ एफआईआर दर्ज करवाने आए हैं और आप वो भी नहीं कर रहे, ऐसा कैसे कह सकते हैं?
अरे मैडम आप गलत समझ रही हैं, हम आपकी मदद कर रहे थे। ठीक है चलिए FIR लिखवा दीजिए। नाम क्या है?
क्या हमारा सिस्टम इतना लाचार हो चुका है कि एक लड़की को उसके साथ हुई छेड़खानी की FIR दर्ज कराने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ती है? हम विमेन एम्पावरमेंट की बातें तो करते हैं, मगर क्या एक औरत को सचमुच सशक्त बनाने में उसके साथ खड़े होते हैं? चाहे वो पुलिस हो या कोई नागरिक, जब एक औरत अपनी आवाज उठाती है तो उस आवाज का यकीन कीजिए, उसे भरोसा दिलाइए कि वो अकेली नहीं। उस एक औरत की कहानी कई महिलाओं की कहानी है जो कहीं डर से या शर्म से दबाई जा चुकी है। देश में ऐसी बहुत सी सामाजिक संस्थाएं हैं जो महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर काम कर रही हैं, जैसे कि सेफ सिटी, और आप उन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं info@safecity.com पर। जब औरत सशक्त होती है तो परिवार और समाज सशक्त होता है। आइए एक दूसरे की ताकत बने। आपके साथ खड़ी हूँ मैं भी।